बलिहार बाबा तुम हम पर बलिहार,
हम तुम पर बलिहार बाबा तुम हम पर बलिहार।
सभी ने प्रेम और शांति का इतना सुंदर वातावरण बना के रखा, ऐसा फील हो रहा है कि हॉल में ही बाबा चक्कर लगा रहे हैं, परम धाम में बैठना ही भूल गए। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी को दर्शन करने दो चंद्रिका दीदी का। और सभी एक हाथ हिलाकर अभिवादन करेंगे। आदरणीय दीदी चंद्रिका जी, बाबा ने नाम ही उनको इतना सुंदर दिया है, बिल्कुल चंद्रमा जैसी शीतलता और रोशनी, पूर्णिमा के चांद जैसे हमेशा चमकदार, आपकी विशेषता है। क्योंकि आप यूथ विंग के चेयरपर्सन हैं, इसीलिए पहले दादी रत्न मोहिनी जी के लिए ऐसा बोलते थे और उसके बाद अब आप ये सेवा संभाल रहे हैं। आप कितने भी बड़े होते जाएं, लेकिन हमेशा ही यूथ रहेंगे और यूथ की तरह ही चलते हैं, यूथ की तरह ही बोलते हैं, क्योंकि यूथ विंग के चेयरपर्सन हैं। तो इसीलिए इस पर ध्यान नहीं जाता कि बहुत बहुत बरसों पहले साकार बाबा ने आप पर दृष्टि रखी, नजर डाली, सर्वशक्तिवान की आप शक्तिशाली और सुंदर रचना है। साकार बाबा मम्मा के हस्तों से पले आपका पूरा परिवार जब ज्ञान में आया, तो उस वक्त गुजरात के बहुत थोड़े से भाई बहन, कुछ अनन्य भाई बहन ही इस ज्ञान को समझ रहे थे, और आप वो विशेष आत्मा हैं जिनका पूरा परिवार ज्ञान में था। आपके बड़े दीदी वेदांती दीदी जो साउथ अफ्रीका में हैं, नैरोबी में रहते हुए विदेश की सेवा संभालते हैं, तो आप दोनों बहनें 1969 की जो पहली पहली कुमारियों की भट्टी हुई थी बाबा के जाने के बाद अव्यक्त बाबा के सम्मुख, उसकी आप फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हैं जिनका अव्यक्त मुरलियों में भी नाम आता है। 1969 की शुरू की अव्यक्त वाणियों में भी बाबा ने मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा की, आपका नाम लिया। आज भी आप उतने ही इंटेलिजेंट, उतनी ही तीव्र बुद्धि, उतनी ही अच्छी याददाश्त, उम्र का कहीं भी असर नजर नहीं आता है, क्योंकि आत्मा पावरफुल है। तो इसीलिए आप वो बाबा की प्यारी स्टूडेंट हैं। और इसके साथ साथ गुजरात महादेव नगर में आप निमित्त मात्र रहते हुए देश विदेश में सब प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, केवल यूथ विंग की ही नहीं, कुमारियों को अनुशासित करने की, आगे बढ़ाने की, माताओं को विशेष प्रेरणाएं देने की, मर्यादाओं में रहना और बाबा के नाम को रोशन करते रहना, ये आपका प्रमुख विषय है, जिसमें आप चाहते हैं कि हर एक बीके, चाहे वो माता है, अधर कुमार है, भाई बहन जो भी है, सब उसमें बाबा का नाम रोशन करें, ये आपके अंदर की इच्छा, चाहना, शुभ भावना रहती है। तो आज आप उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या माताओं को चाहिए, शिव क्षमा पर कैसे कुर्बान हो जाएं, सचमुच का परवाना कैसे बने। थोड़ी देर योग में बैठते हैं तो अच्छे परवाने जैसी फीलिंग आती है, लेकिन जब घर ग्रस्त में रहते हैं तब भी वैसी ही फीलिंग में रहे, वैसा ही प्यार बना रहे, इसकी बहुत सरल, सहज, सुंदर युक्तियां हमारे बहुत प्यारे, बहुत रिस्पेक्टेबल, आदरणीय चंद्रिका दीदी जी हमें समझाएंगे। थैंक यू दीदी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नमः शाम के समय शांतिवन एयरपोर्ट पर बहुत सारी भीड़ लगी है। किसकी है? बाबा की भली भूली दिल वाली मीठी मीठी माताओं की बाबा ने माताओं को आगे रख करके इस यज्ञ की स्थापना की। बाप दादा दोनों ने ही भोली भाली माताओं को निमित्त बना करके यज्ञ कारोबार सौंपा। जरूर है बाबा के पास उसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। आज साकार में हमारे सामने नहीं है, पूर्वज रूप में है, लेकिन हमारी मम्मा, हमारी दादियां वो क्षमा पर परवाने थे, जिन्होंने कुछ नहीं देखा। क्षमा पर सच्चे परवाने बन करके जल मरे। जीते जी मर गए। उनों की वो फिदा होने की अवस्था को देखते हुए, बाप पर फिदा होने वाले वो परवाने यज्ञ की आधार मूर्तियां बनी। अब हमारे को ये विषय दिया है, खास माताओं को, क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने। वो परवाने अपना नाम अमर करके गए, फिदा हो करके यज्ञ को विश्व में नामांकित करके गए, और आज सारी विश्व कहती है ये माताओं बहनों की संस्था है। हम भी बाबा की यज्ञ में, हमारे गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में आए हैं, और फिर हमें भगवान मिला। अगर हमें भी गृहस्थ के पहले ही भगवान मिल जाता, शादीशुदा बनने के पहले ही भगवान मिल जाता, तो इसमें से शायद कोई भी माता नहीं बनी होती। सही बात है। सब कुमारियां ही रह जाती, लेकिन ड्रामा में बाप दादा को, आप सभी के गृहस्थ को भी इतना जग प्रसिद्ध करना है, जो सन्यासी महात्माएं भी आकर के सिर झुकाए कि यहां गृहस्थ में रहने वाले इतने श्रेष्ठ पवित्र, तो ये फिर सिद्ध करने के लिए गृहस्थ की आवश्यकता भी है। हम घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन जब हम भगवान के बनते हैं, जब बाबा इस धरती पर आता है, तब एक सत्य बाबा आकर के खोल देता है। दुनिया में बहुत सारी कहानियां हैं, लैला मजनू की कहानी है, श्री फरहाद की कहानी है, जैसल तोरल की कहानी है, कि वो ऐसे क्षमा पर परवाने थे जिन्हों को अपनी क्षमा के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आया। बस वो क्षमा पर जल करके फिदा हो करके अपनी प्रीत की रीत से जग प्रसिद्ध हो गए। अब हम भी परवाने हैं, पर हमारी क्षमा विचित्र है। क्यों? उसको चित्र नहीं है, वो निराकार है, हम साकार में हैं। और कितना ज्यादा अंतर है, क्षमा परवाने के बीच। वहां तो मनुष्य को मनुष्य से प्रेम हो जाता है, देहधारी को देहधारी से प्रेम हो जाता है, और यहां तो हम शरीरधारी आत्माओं को विदेही परमात्मा के साथ प्रेम हो गया है। जो देखने में तो आता नहीं है, जिसको पकड़े तो हम पकड़े कैसे, ऐसे विदेही परमात्मा से, क्षमा से हमारी जो प्रीत हुई है, तो हमें सचमुच में क्षमा पर फिदा होने वाले, जल मरने वाले, बलिदान देने वाले परवाने बनना है। जो कहते हैं हम तो क्षमा पर जल मर कर खत्म हो चुके हैं, वो हाथ उठाए हैं। फिर तो ये क्लास की जरूरत है, क्लास की जरूरत है, कोई बात नहीं। सुनते हुए स्वयं को देखते जाना है, सुनते हुए स्वयं को चेक करते जाना है कि क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने में मेरा नंबर कहाँ है। वैसे तो हम सब आत्माएं युगों से परमात्मा को ढूंढते आ रहे थे, जन्मों से बाबा को ढूंढते आ रहे थे, भक्ति में तो हम घायल हुए पड़े हैं, भक्ति में हम घायल हुए पड़े हैं, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान मार्ग की गहराई, ये ज्ञान मार्ग की महीनता अगर हम जल मरे हो, हम फिदा हो चुके हो, तो हम बाप समान बन गए हो। समझ गए? हमारी स्थिति बाप समान बन जाए, ये है समा पर फरवानों की निशानी, संपन्नता, संपूर्णता, समान की स्थिति। हमें वो स्थिति लानी है, इसलिए आज इस विषय पर हमें चिंतन करना है, क्योंकि मेरा बाबा विदेही है। मेरे और बाबा के प्यार में अंतर नहीं रहे, इसके लिए नंबर वन देह भान का त्याग। शरीर में रहते हुए कोई भी प्रकार का देह भान, अब देह भान में बहुत बातें आती हैं, मैं काली हूँ, गोरी हूँ, पतली हूँ, मोटी हूँ, सुंदर हूँ, आदि आदि। फिर देह को सुंदर दिखाने के लिए वस्त्रों का आकर्षण, वस्तुओं का आकर्षण, देह भान में मैं अटकी हुई तो नहीं हूं। मैं आत्मा शरीर में रहते हुए और शारीरिक अवस्था में रहूं, दूसरा देह भान की कसौटी कब होती है? जब शरीर में बीमारी आती है, कर्म भोग आता है, तब देह का भान आत्मा को खींच के रखता है, वो शरीर से डिटैच नहीं होने देता है। अगर मैं देह भान से मुक्त हूं तो ये देह को कुछ भी होता रहे, मैं अपने बाबा की याद में अशरीरी विदेही अवस्था में स्थित रहूं, मुझ आत्मा को देह का आकर्षण न हो, देह भान या देह भाव का आकर्षण न हो, ये एक कसौटी है। स्वयं को भगवान पर फिदा होने के लिए जब तक देह भान है तब तक फिदा का अनुभव नहीं होगा, बीच में देह की दीवार का कारण जुदा का अनुभव कराएगी। तो देह भान से डिटैच स्थिति चाहिए। दूसरा, हम तो भगवान के बन गए, मैं आत्मा हूं, बस अब बाबा मेरे सर्व संबंधी सब कुछ है, ये है एक नशा। पर दूसरी तरफ है देह अभिमान मैं कितना पढ़ी लिखी हूं, मेरा स्टेटस क्या है, मैं किस परिवार वाली हूं, मैं किस स्कूल की हूं, लोगों में मेरा कितना मान सम्मान है, लोगों को कुछ से मुझे किस मान सम्मान से ट्रीट करना चाहिए, मैं और मेरेपन का भान, देह अभिमान जिसमें और थोड़ा प्लस हो जाता है देह के संबंधों का भान, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा ससुराल, ये जितना मेरे 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 संसार में चाहे मोहवश चाहे अभिमानवश आत्मा उसी शरीर के अभिमान में रहती है, तो आत्मा को परमात्मा के गुणों का और आत्मा को अपने गुणों का अनुभव नहीं होता है। हम योग में बैठते हैं, अमृत वेले उठती है, बड़ी लगन से उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि में जो देह का अभिमान भरा हुआ होता है, जिसके कारण बुद्धि बोझ वाली होती है, और वो बोझ वाली बुद्धि होने के कारण क्या होता है, नींद आती है, योग नहीं लगता है, थकावट महसूस होती है, वो परमात्मा कशिश जो महसूस होनी चाहिए और एक बिजली की तरह हमारी जीवन होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा लाइट है, माइट है, शक्तिशाली है। अगर बाबा से हमारा योग लगा, हम देह ही आत्मिक अभिमान में है, देह अभिमान में नहीं है, न देह भान है, न देह का अभिमान है, तो रूह को वो राहत मिलेगी, रूह अपने को इतना हल्का फील करेगी। और जैसे इस दुनिया में भगवान के सिवाय मेरा कुछ है ही नहीं, अल्पकाल के कोई नशे आत्मा को नीचे नहीं ले आएंगे, तो देह के अभिमान से, देह के संबंधों के अभिमान से मुक्त अवस्था बनेगी कैसे? आज नहीं है, बहुत सीधा रास्ता है, बाबा को मालूम है, शरीरधारी बच्चों को जितने संबंध हैं, वो सारे संबंधों का सुख, सारे संबंधों का कनेक्शन मुझे मेरे बच्चों को देना पड़ेगा। इसलिए बाबा मुरली में स्वयं सामने से क्या कहता है, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, टीचर हूं, सतगुरु हूं, साजन हूं, सर्जन हूं, धोबी हूं, सर्वंट हूं, सारे संबंध निभाने का वायदा परमात्मा ने हम आत्माओं से किया है। अंदर से सच्चाई से ये देखने की बात है कि मैंने सचमुच दिल से सारे संबंध बाबा के साथ जोड़े हैं। कोई भी संबंध का आकर्षण मुझ आत्मा को अपनी ओर खींचता तो नहीं है, समझो परिवार में किसको कोई तकलीफ है, ऐसा नहीं हमें कोई इफेक्ट नहीं हो, हम उसका ध्यान नहीं देवे, क्योंकि हम तो भगवान से संबंध रखते हैं। नहीं, इस जन्म का आपका जो संबंध है आप परमात्मा को ट्रांसफर कर दो, बाबा ये आपका बच्चा है, मेरा चाहे कुछ भी संबंधी है लेकिन अभी ये जिम्मेवारी मैं आपको सौंपती हूं, बाबा आप इस बच्चे का ख्याल रखो, ऐसा कह करके आप योगदान करो, आप शुभ भावना का दान करो, उस आत्मा को पहुंचेगा तो देह का अभिमान जरा भी नहीं हो तो हम समा के पर परवाने बन सकते हैं। फिर तीसरा नंबर, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, हम माताओं को घर गृहस्थी चलानी है, हमें कितने सारे साधनों की जरूर पड़ती है, बिना साधन तो चलता नहीं है, घर में फर्नीचर भी चाहिए, किचन में साधन सामग्री भी चाहिए, कुछ सुख सुविधा के साधन भी चाहिए। अब एक है कि ठीक है पुरुषार्थ करते हैं, वो सब साधन आते हैं, साधन से काम चल रहा है, वो एक बात है, और दूसरी बात है हम साधनों के गुलाम बन के यूज करते हैं। अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा जूता चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे पर्दे चाहिए, अच्छे सोफे चाहिए, चाहे हमारी कैपेसिटी नहीं भी हो, हमारे घर वाले की कैपेसिटी नहीं हो, परंतु क्योंकि मैंने उसको देखा है उनके जैसा चाहिए, अब देह में भी नहीं फंसना है, हम तो और नीचे उतर करके देह के साधनों में फंसे हुए हैं, और जब तक साधनों में फंसे हुए हैं हमारी साधना में लगन नहीं आ सकती है। या है साधना या है साधनों की आकर्षण, क्या मैं आत्मा अल्पकाल के साधनों से साधनों को यूज करते हुए डिटैच हूं? कि मैं साधनों में अपनी बुद्धि जुड़ाती रहती हूं, तो अपने को ये सुख सुविधा साधनों से भी उपराम होना पड़े। जब तक ये सूक्ष्म छोटे 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 आकर्षण है बुद्धि को, तब तक हम क्षमा पर परवाने नहीं गिने जाएंगे, क्षमा पर फेरी पहनने वाले हैं। आसपास चक्कर काटने वाले हैं, परंतु नहीं, मुझे क्षमा पर परवाना बन करके ही रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर वन, अर्जुन भी इसी चक्कर में घूमता रहता था। वो गीता के अंदर कृष्ण अर्जुन का संवाद बताते हैं ना, वो भी मोह को नहीं मार पाता था। कहते थे ये मेरे काका मामा चाचा इन सबको मार करके मुझे स्वर्ग मिले तो ऐसा स्वर्ग में क्या करूंगा? तब क्या उपदेश देते कि ये मरे हुए हैं, तुम्हें तो उसको निमित्त मात्र मारना है, बुद्धि से मारना है। क्षमा पर परवाने वो है जो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मोह नष्ट होगा, स्मृति स्वरूप बनेंगी। तो ये सब प्रकार के सूक्ष्म मोह से डिटैच होने से, नष्टो मोहा बनने से ही स्मृति स्वरूप, पहला अपना स्मृति स्वरूप, मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं जिसकी हूं जहां की रहने वाली हूं, मुझे आत्मा के सच्चे सही पावन स्वरूप की स्मृति रहे और अनुभूति रहे कि इस शरीर की मालिक मैं आत्मा हूं। अपना जो जैसा सतो प्रधान स्वरूप, बाबा जिसको कहते संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, क्षमा पर मरने लिए संपूर्ण सतो प्रधान कर्मातीत अवस्था और अपने स्वरूप की कंप्लीट स्मृति, मैं जो हूं जैसी हूं जिसकी हूं जिस स्थान की रहने वाली हूं, मैं एक शुद्ध श्रेष्ठ पवित्र दिव्य अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य आत्मा, ये स्मृति स्वरूप। चलिए इस पहली स्मृति को अच्छी तरह से खुद अनुभव कीजिए, रिलैक्स होके श शरीर से डिटैच होके स्वयं को मस्तिष्क में एक दिव्य चेतना महसूस करते हुए बुद्धि रूपी नेत्र से देखे अपने उस अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाशमय शक्तिशाली स्वरूप को मैं ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म शक्तिशाली मैं आत्मा शांत स्वरूप शांत स्वरूप शांत शांति मेरा स्वधर्म है शांति मेरी वास्तविकता मैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप मैं आत्मा परमात्मा की संतान ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद सुख स्वरूप शांत शांति स्वरूप। पवित्रता स्वरूप सर्वशक्ति संपन्न मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी संपूर्ण पवित्र आत्मा मैं आत्मा शरीर में होती हुई अशरीरी हूं देह में रहती हुई विदेही हूं मुझे आत्मा की आत्मिक स्मृति कितनी शक्तिशाली है देह भान से मुक्त देह अभिमान से मुक्त देह के संबंधों के आकर्षण से मुक्त ये शरीर रूपी साधन और शरीर रूपी साधन के कार्य में आने वाले सर्व साधनों के आकर्षण से मुक्त मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं मैं आत्मा स्वतंत्र हूं जीवन मुक्त हूँ। कमल पुष्प समान न्यारी और प्रभु की प्यारी हूँ। ये हुई बाबा जी कहते हैं अपने को आत्मा समझकर याद में बैठने की विधि वैकल्पिक। हम स्वयं को आत्मा समझने की, आत्मिक स्मृति में रहने की स्थिति जो बाबा ने कही थी, आत्मिक स्वरूप की स्मृति से हम नष्टो मोहा बने। नष्टो मोहा बनने की स्थिति से हमारा आत्मिक स्वरूप निरंतर बना रहेगा। तो एक है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की स्थिति में रहना। अब हम परवाने क्षमा पर मर चुके, हमें अंदर से बेहद का वैराग्य आ रहा है। इस पुरानी दुनिया में रखा ही कुछ नहीं है तो हमें क्या दिखाई देगा? केवल एक क्षमा दिखाई पड़ेगी। और जब हम ऐसे क्षमा को देखेंगे तो हम अपने जीवन के अंदर क्या अनुभव करेंगे? हम क्यों हैं अभी इस दुनिया में? हमें यहां कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें ये दुनिया कड़वी लगती है, फीकी नहीं। फीकी चीज भी डायबिटीज वाले खा लेते हैं, कड़वी लग रही है। इस दुनिया में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। तो दूसरी स्थिति है परमात्म स्मृति यथार्थ स्वरूप से कि अब हमें बाप समान स्थिति में रह करके जो कार्य बाबा कर रहे हैं वो करना है। बाबा आया ही है दुनिया को बदलने के लिए, तो हमें बाप समान स्थिति में रह करके दूसरों को बाप समान बनाना है। ये है परवाने जो क्षमा पर फिदा रहते हैं कि बस अब मेरे लिए बाबा के कुछ सिवाय कुछ है नहीं। मुझे बाबा मिला, मेरे सदा संग बाप हैं, मैं कंबाइंड स्वरूप हूं, बाबा मेरे सर्व संबंधी हैं, जब ये धारणा जीवन में आती जाएगी तो जीवन में प्रत्यक्ष रूप में निमित्त भाव, हम केवल निमित्त भाव से रहे हुए हैं, बाबा के डायरेक्शन पर, बाबा की श्रीमत पर, बाबा के कार्य अर्थ, हम निमित्त मात्र इस पुरानी दुनिया में हैं। तो निमित्त मात्र है, बाकी तो हम परवाने मर गए हैं, हम क्षमा पर मर चुके हैं, अब उसके डायरेक्शन पर निमित्त भाव से चल रहे हैं, उस परवानों में निमित्त भाव नजर आएगा। दूसरा क्या दिखाई देगा? चाहे कोई भी सीन है, कैसी भी सीन है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन साक्षी अवस्था, कुछ मैं तू मेरा तेरा सच झूठ कुछ भी नहीं, साक्षी भाव से चल रहे हैं। ठीक है, बाबा ने हमें ये समझ दे दी है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा कल्याणकारी है, हर एक आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रही है, ये ड्रामा बिल्कुल पॉजिटिव है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। तो परमात्मा ज्ञान के समान परवाने क्षमा के समान अपनी वो ज्ञान की पराकाष्ठा से साक्षी अवस्था में रह पाते हैं, हम साक्षी हैं, कुछ लेना देना नहीं है, ये परवाने की दूसरी निशानी है, निमित्त भाव, साक्षी अवस्था, फिर तीसरा ट्रस्टीशिप। बाबा ने हमें घर बाहर छुड़ा नहीं दिया है, घर गृहस्थ में रहना है, बाल बच्चे धन दौलत परिवार के बीच में रहना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या बना? ट्रस्टी बना, अपना सब कुछ बाबा को दे करके माताओं को निमित्त बना करके सुप्रीम ट्रस्टी बन गया, जो हद का था वो सब कुछ माताओं बहनों के नाम ट्रस्ट बना करके उससे भी बाबा उपराम हो गया, सारी दुनिया का बुद्धि से त्याग करके ट्रस्टी की स्थिति में रहा। हमें भी ये सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा को दे करके बाबा की श्रीमत प्रमाण उसको कार्य में लगाते हुए एकदम ट्रस्टीशिप की स्थिति से चलता है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ किसका? बाबा का। तेरा, मैं भी तेरी, मेरा भी तेरा। तो ट्रस्टीशिप का प्रैक्टिकल पार्ट अपने जीवन में अनुभव। और इस दुनिया में रहते हुए एकदम उपराम हमें कुछ नजर आ दे ही रहा है। हमारी आंखें कहां डूब नहीं रही है, हम खोए हैं। किसमें खोए हुए हैं? प्रभु प्रीत में खोए हुए हैं। इस दुनिया के कोई प्रभावों में हम प्रभावित नहीं होते हैं। जानते हैं ये सब खत्म होने वाला है, इसमें रखा ही क्या है? कुछ भी है, कितना भी भपका है दुनिया का, लेकिन हम जानते हैं ये घड़ी दो घड़ी का खेल है। तो उपराम अवस्था, क्षमा पर परवाने किसको कहते हैं? उसमें क्या नहीं होता है और उसमें क्या होता है, हम दोनों के नॉलेजफुल बन गए। अब क्या करना है? स्वयं को अच्छी तरह से देखते हुए जब बन ही गए हैं भगवान के, अगर आधे यहां और आधे वहां, तो ना यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, अधमुए हो जाएंगे। अंदर में वो जो नशा, वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख निरंतर रहना चाहिए। वो रहेगा परवाना बन करके रहने से, जीते जी मर कर रहने से। ये अध्यात्म की यात्रा है, ये स्थूल क्षमा नहीं है और न ही हम स्थूल परवाने हैं। ये परम परम क्षमा है और हम सब आत्माएं क्षमा पर परवाना होने के लिए आकर्षित होकर के आए हैं। हम हैं, हम सब परवाने हैं, पर एक है जल मरने वाले परवाने और दूसरा है फेरी काटने वाले परवाने। मुझे क्या बनना है? मुझे भगवान के साथ क्या अनुभव करना है? और उसके लिए ये हमारी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में याद की यात्रा बाबा जो कहते हैं, जिस पर हमें लग लगी की तरह लगे रहना है, इसमें जरा भी अलबेलापन न आए। देखो, अध्यात्म की यात्रा की लौ अग्नि ठंडी कब पड़ जाती है? तीन ही कारण मुख्य है, आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी। आलस्य शरीर का है, क्या करें, थक गए हैं, नींद पूरी नहीं मिली है, शरीर में दर्द बहुत है, थकावट है, चाहते तो हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार सोचने से आलस्य नेचर बन जाता है, आलस्य संस्कार बन जाता है। और फिर आलस्य को जो नहीं जीत पाते हैं, उसको सबसे बड़ा घाटा है, वो दिनचर्या पर ठीक नहीं चल पाते हैं। योगी जीवन की दिनचर्या अमृत वेला रोज करना है, मुरली क्लास रोज करना है, ट्रैफिक कंट्रोल हर समय करना है, नुमा शाम रोज करना है, ये जो नियम है उसमें नहीं चल पाते आलस्य के कारण। पर अगर आप आत्मा हो, अपना विल पावर शक्तिशाली है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं आत्मा ही शरीर की मालिक हूं, मैं उनको जैसे चलाऊं उसको चलना पड़ेगा। एकदम अलर्ट, एकदम एक्टिव, जरा भी आलस्य नहीं हो तब साधना के मार्ग पर सफलता मिलेगी। दूसरा है अलबेलापन। अलबेलापन कहाँ आता है? मन में आता है। आलस्य शरीर से संबंध रखता है, अलबेलापन मन से संबंध रखता है। आज नहीं करते हैं, ठीक है कल कर लेंगे, अब इतना जल्दी क्या है, फिर कल हुई सुबह, फिर क्या हुआ, ठीक है अभी चाहते थे तो आज कर लेंगे, आज ही अचानक काम आ गया है इसलिए आज भी नहीं कर सकेंगे। सच्चाई से आप हरेक अपने आप को देखो, आज की तारीख में आपकी बुद्धि रूपी डायरी में कितने ऐसे काम हैं जो आपने सोचा था कि कल कर लेंगे, लेकिन वो कल आज महीना हो गया, दो महीना हो गया, छह महीना हो गया, वो कल अभी भी आई नहीं है, ऐसा जिनको अनुभव है हाथ उठाओ, है ना? देखो सबको अनुभव है ना? कल किसने देखी? हमारी दादी प्रकाशमणि कहती थी, बहने कोई काम कल पर नहीं छोड़ना। कल किसने देखी? कल वाली कल चली गई, आने वाली कल का कोई भरोसा नहीं है। तो अलबेलापन जो मन में आता है ना, वो मिटाने का एक ही महामंत्र बाबा ने दिया है। कौन सा मालूम है? कौन सा है? कल करना सो आज कर, आज करना है सो अब कर, अब नहीं तो कब नहीं। मन के अलबेलेपन को खत्म करो। और तीसरा है बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस। बहानेबाजी में क्या करेंगे? दूसरों को दोषी ठहराएंगे। मुझे तो करना था ना, पर इसने मदद नहीं की। मैं तो बहुत चाहती हूं करूं, पर ये मेरे को साथ नहीं देते हैं। एक्सक्यूजेस, बहाने। बहाने पर चलेंगे तो कभी रास्ता नहीं मिलेगा। कहावत है, मेक अ वे और फाइंड अ वे। कुछ भी काम आपको करना है तो या रास्ता बना लो या रास्ता ढूंढ लो, पर रुको नहीं। कोई बहाना नहीं, डू और डाई। कोई बहाना हमारे जीवन में नहीं आवे। मुझे करना है, वह से भी मैं करके छोड़ूंगी। जब ये दृढ़ता हमारे जीवन में आएगी, तब हमारी ये क्षमा पर जल मरने की मंजिल में हम सफल हो पाएंगे। तो हम सब चाहते हैं ना? क्या चाहते हैं? कैसे परवाने बने? जो चाहते हैं क्षमा पर, जल मरने में ही मजा है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं, वो हाथ उठाएं। अच्छी तरह से आए। उसका मुहूर्त कब निकालें? अच्छा मुहूर्त किसी ज्योतिषी से निकलवाना पड़ेगा? ये मुहूर्त अच्छे से अच्छा है ना? शांतिवन के आंगन में, माताओं की भट्ठी में, नुमा शाम की वेला में, हम परवाने क्षमा पर जल मरे। ठीक है, चले। अच्छी तरह से आज की इस वेला के महत्व को समझते हुए हम अपने आप से संकल्पबद्ध होंगे। उसके पहले कुछ मिनट जहां हो वहां खड़े हो जाए और अपने आप को एकदम रिलैक्स कर ले और हमारी कोई बहने आकर के खूब सुंदर गीत के साथ प्रीत की एक्सरसाइज करा लेवे, कौन कराएगा? आ जाए स्टेज पर जिसको आता है। हमारे भाई लोग गीत बजाने में कुशल हैं, टिम टिम करेंगे, रिम रिम करेंगे, पर अपने आप को कौन कराएंगे एक्सरसाइज? आ जाए छोटी जहां है वहां खड़े होके करने वाली एक्सरसाइज आई। और जिनको योग कराने का प्रोग्राम मिला है वो भी अपना स्थान ले ले, आ जाइए, आइए स्टेज पर। कौन बहने कराएगी? बाबा की यादों में मस्त करने वाले सुंदर गीत के साथ एक्सरसाइज करके शरीर को एकदम रिलैक्स करेंगे और याद की यात्रा में हल्के पुल्के हो करके उड़ चलेंगे।
गगन में जान चलता है, चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में जान चलता है, चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है।
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा,
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं दियो मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह, मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
जिंदगी में हर एक बात कहूं, एक पल भी ना मैं दूर रहूं, दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं, मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा, जैसे अनहद नाम गूंजता है गूंजता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 जैसे गगन में सांस चलता है चलता है, उनकी किरणों की धारा में दिल हर पल रहता है, जैसे गगन में चांद चलता है चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है।